धड़कन अपने आप हाथ नहीं चलता, और जब हाथ चलना शुरू होता है इंसान को पता चलता है। बताओ मुझे तुम्हारा हाथ कैसे चला, करदम गुस्से से पूछ रहा था। मैं बता तो रही हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह से चला। मुझे नहीं पता चला कि ट्रे गर्म है, धड़कन धीमी आवाज में मनमनाई। उसकी मनमनाहट ने करदम का गुस्सा कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। करदम को लगा कि शायद वो उससे डर रही है। अगर ट्रे गर्म थी तो तुम उसे रख देती, तुम्हें उठा कर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? वहां किचन में ताइशा मौजूद थी ना, तुम उसे कह सकती थी। हाथ पर मरहम लगाते हुए उस पर जरा नरमी दिखाई थी। वो उसे ये नहीं बता पाई कि ताइशा ने ही तो उसे जबरदस्ती ट्रे उठाने पर मजबूर किया था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ताइशा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। शायद वो उसे जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ताइशा की भला उसके साथ क्या दुश्मनी है, वो खुद से ही सवाल करती करदम के चेहरे को देखने लगी। हाँ, यही तो दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी, करदम शाह, ताइशा की पहली और आखिरी मोहब्बत, जो अब सिर्फ और सिर्फ धड़कन का हो चुका था। वजह जानना धड़कन के लिए मुश्किल ना था, लेकिन एक फैसला उसने कर लिया था, वो ताइशा को अपने साथ इस तरह कभी नहीं करने देगी। हूर काफी देर से मुकदम का इंतजार कर रही थी। अभी तक वो उसकी कल रात की शिद्दतों से नहीं संभली थी, और फिर आज दोपहर में उसका गुस्सा देखकर भी वो काफी घबरा गई थी। बेचारी सवेरा दीदा को भी कितना डांट दिया, सारा दिन एक ही जगह बैठने की वजह से अब वो इतना थक चुकी थी कि कोई इंतहा नहीं, और ऊपर से कल रात भी वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। एक बार उसका दिल चाहा कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन मुकद्दम की ख्वाहिश और उसके जज्बात को इस तरह से नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकती थी। उसके हर अंदाज में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस करके वो एक ही रात में मगरूर हो चुकी थी। वो इस शख्स की मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से देना चाहती थी। थकन के बावजूद भी वो उसका इंतजार करती रही, न जाने वो कहाँ था, शायद उन सब मेहमानों को संभाल रहा होगा। काफी सारे मेहमान तो जा चुके थे और काफी सारे हवेली में रुके थे, और कुछ अभी भी जा रहे थे। सारी हवेली ही मेहमानों से भरी हुई थी। आखिर शाह साईं के दोनों पोतों की शादी थी, नुमाइशों के आदि तो शाह साईं पहले भी कभी ना थे। ऊपर से करदम की सादा तबीयत, ये सब हंगामा शोर शराबा तो उन्होंने मुकद्दम के कहने पर किया था, वरना वो तो सादगी से उनकी शादी करना चाहते थे। जबकि मुकद्दम ने साफ लफ्जों में कहा था कि वो हूर को उसकी शादी की हर खुशी देना चाहता है, जिस पर दादा साईं ने मजबूर होकर शादी पर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था। उनके खानदान का कोई शख्स ऐसा ना था जिसने उनके दोनों पोतों की शादी न देखी हो। वो मेहमानों को एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था, आते आते उसे रात हो चुकी थी। उसे यकीन था कि हूर इस वक्त तक सोच चुकी होगी। शादी के बाद उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि हूर उसकी जिम्मेदार साईं या करदम साईं की नहीं, इसलिए उसने फैसला किया था कि अब उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां वो खुद संभालेगा। आज उसने दादा साईं से भी इस बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुए, और ये भी कह दिया कि अब उनका पोता उसे जिम्मेदार हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये सोच वक्ती नहीं बल्कि हमेशा के लिए होनी चाहिए। ये ना हो कि जिम्मेदारियां संभालने का शौक सिर्फ दो दिन का ही हो, क्योंकि मुकद्दम शाह जब बोर हो जाता था तब वो काम छोड़ देता था। उसने भी कह दिया था आप बेफिक्र रहें दादा साईं। मुकद्दम शाह हर अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश कर रहा है, और बोरियत की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हुरिया से कभी बोर नहीं हो सकता, वो तो 19 साल से उसकी जान थी। मरहम लगाने के बाद करदम ने उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। इतना मुश्किल नहीं था करदम साईं, ये बात आप मुझे कल रात में खुद कह सकते थे, उसकी जुबान से निकला। कहना चाहता था लेकिन उस वक्त मैं वापस कमरे में नहीं आना चाहता था। हाँ बिल्कुल, आप उस वक्त कमरे में क्यों आएंगे, आपको तो डेरे पर जाना था। आखिर दिल बहलाने का सामान जो मौजूद था वहाँ, खालिस बीमियों वाले अंदाज में धड़कन ने उसके पैरों तले से जमीन खींची थी। करदम उसे देख कर रह गया। इस लड़की को 17 दिन की रहाई की तो हर किस जरूरत न थी, वो उम्र में जरूर छोटी थी लेकिन दिमाग उसका छोटे बच्चों जैसा हरगिज न था। दिल बहलाने का सामान? हाँ, करदम ने हालत का मुजाहिरा करते हुए उसकी बात पकड़ी थी। जी बिल्कुल, सवेरा दीदा ने बताया है मुझे कि वहाँ दिल बहलाने का सामान मौजूद है, धड़कन ने अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा, और क्या बताया तुम्हारी सोई राजदानी ने, करदम ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने नजदीक किया। बस यही कहा कि पूछो कि डेरे पर ऐसा कौन सा खजाना मौजूद है, जब कल रात आप मेरे पास कमरे में आने के बजाय डेरे पर चले गए, बल्कि उसका चेहरा देखते हुए जानते नजरों से पूछने लगे, जबकि करदम का दिल चाहा कि उसकी बातों पर कह के लगाए। सवेरा कौन से कॉन्सेप्ट पे आ रही थी ये तो वो अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन फिलहाल वो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कोई इरादा नहीं रखता था। पर वैसे भी ये बात सवेरा ने धड़कन की सोच में डाली थी। किसी दिन तुम्हें लेके जाऊंगा उस डेरे पर, फिर बताऊंगा कि वहाँ क्या खजाना है, लेकिन फिलहाल जल्दी से इस कमरे से निकलो क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखकर मेरी नीयत खराब हो रही है। करदम की जुबानी बात ने धड़कन के कानों की लू तक सफर दी थी। आपकी नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं है। उसके हाथ से अपना हाथ खींचती वो जल्दी से बाहर भाग गई, जबकि करदम उसकी बात का मतलब निकाल रहा था। क्या वो पहले ही नजर में उसकी नजरों में अपने लिए पसंदीदगी की देख चुकी थी? क्या वो पहले दिन से जानती थी कि करदम का दिल उसके लिए मचलने लगा है? वो करदम जो अपने जज्बात को काबू करने के लिए उस पर पाबंदियां लगाता था, जो उसे बेफजूल में डांटता था, क्या इस सब की वजह धड़कन जानती थी? क्या धड़कन को इस बात का अंदाजा था कि करदम ने जब पहली बार उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा तभी उसका दिल उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि इस सब पर सिर्फ तायशा का हक है। उसने कभी अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम नहीं दिया था। फिर न जाने किस तरह से अल्लाह ने उसकी सुन ली और दादा साईं के दिल ने धड़कन के लिए करदम को सोच लिया। कितनी हसीन थी वो रात उसकी जिंदगी में जब उसने धड़कन का नाम अपने नाम के साथ महसूस किया था और धड़कन ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसका इकरार करदम को एक नई जिंदगी दे गया था और अब तो वो मजबूर था क्योंकि अब वो उसके निकाह में थी। उससे मोहब्बत करना, उसको चाहना तो अब करदम का काम था। मेरी छोटी सी पटाखा, उसे खिताब से नवाजते हुए वो बेख्तियार मुस्कुराया। वो कमरे में आया तो हुरिया वलीमे के ड्रेस में बेड क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी, या शायद सो रही थी। वो कल रात भी नहीं सोई थी और फिर आज सारा दिन भी उसे एक सेकंड भी आराम करने को नहीं मिला था। इस वक्त भी वो मुकदम की वापसी का इंतजार करती, उसकी ख्वाहिश के एहतराम में उसी तरह से तैयार बैठी थी। उस वक्त उसे अपनी मासूम बीवी पर टूट कर प्यार आया था। वो उसके करीब बैठकर उसके सेवरात की कैद से आजाद करने लगा। हुरिया अपने करीब हरकत महसूस करके आंखें खोले उसे देखने लगी। मुझे पता है आपको मेरी बहुत परवाह है मेरे महबूब, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी कीजिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गई तो मेरा गुजारा नहीं होगा, वो गमगीर लहजे में कहता उसके दुपट्टे से पिंस निकालते हुए उसे दुपट्टे की कैद से आजाद करने लगा। उठो जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ वरना मेरी नीयत खराब हो रही है, जाओ चेंज करके और रिलैक्स होकर आराम करो, वो उसे सहारा देकर उठाने लगा। हुरिया उसकी बात मानते हुए अपना शरारा संभालती उठी। उसे ये जानकर खुशी हुई थी कि मुकद्दम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की ही नहीं बल्कि उसकी भी फिक्र करता है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई तो मुकद्दम चेंज किए बेड पर लेटा था। उसे आता देखकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे फौरन ही हुरिया ने थाम लिया। उसका हाथ थाम कर मुकद्दर ने उसका सर अपने सीने पर रखा। यहाँ कान लगाओ और पूछो इन जनाब से आखिर चाहते क्या है, तुम्हें देखकर इतने बेकाबू क्यों हो जाते हैं? उसके अंदाज पर हुरिया बेख्तियार मुस्कुराई, जबकि उसकी हर धड़कन के साथ हुरिया अपना दिल धड़कना महसूस कर रही थी। क्या कह रहा है, मुकद्दम ने पूछा। कह रहा है सो जाए, बहुत रात हो गई है, हुरिया ने उसके जज्बात से घबराते हुए कहा, जबकि उसके अंदाज पर मुकद्दम का कहका बुलंद हुआ। बहुत ही डरपोक वाकई हुई है आप मोहतरमा, एक ही रात की शिद्दत नहीं सह पाई और हम हैं जो 19 साल से दिन रात आपका इंतजार करते रहे हैं, वो उसे अपने सीने में भेंचे हुए बोला, जबकि हुरिया को उसकी एक एक बात पर यकीन था। अपनी मोहब्बत को उसने निकाह की सूरत में साबित किया था। उसकी पुरसकून बाहों में न जाने कब वो पुरसकून नींद सो गई, लेकिन नींद में भी अपने बालों में चलती उसकी उंगलियों को महसूस कर रही थी। क्या तुमने धड़कन के हाथ चलाए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तायशा, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? न जाने सवेरा के दिल में क्या समाई कि वो धड़कन के लिए परेशान हो गई। वो तो बस करदम और धड़कन की तलाक करवाना चाहती थी, लेकिन कल रात अकेले में उसने क्या सोचा कि वो तायशा की मदद करे ही क्यों, जबकि तायशा को रास्ते से हटाकर वो और धड़कन हमेशा के लिए एक ही घर में रह सकती थी। वो दोनों बहनें हमेशा खुशी से रह सकती थीं। उसे तायशा जैसी मुसीबत को गले डालने की जरूरत ही क्या थी? मैं क्या करती दीदा, वो लड़की हर वक्त करदम साईं के आगे पीछे घूमती रहती है, हर वक्त उनके साथ रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज आप कुछ करें ना, तायशा ने सवेरा का हाथ थामते हुए कहा, जो सवेरा ने फौरन ही झटक दिया। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसके मुंह पर दो थप्पड़ मार दे जिसने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आज के बाद धड़कन को बेफजूल नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सवेरा ने टालने वाले अंदाज में कहा और उठकर बाहर चली गई। दादा साईं, मैं कुछ वक्त हुरिया के साथ अकेले गुजारना चाहता हूँ, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, कभी मेहमान तो कभी घर के ही लोग, मैं थोड़ा वक्त उसके साथ बिल्कुल अकेले गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए उसे अपने साथ ही लेके जाना चाहता हूँ। मुकद्दम साईं, हम कह तो रहे हैं कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, आप बेशक चली जाइएगा, लेकिन धड़कन और करदम भी आपके साथ जाएंगे, दादा साईं ने समझाते हुए कहा। नहीं, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता, मैं हुरिया को लेकर जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, वो जिद्दी लहजे में बोला। उसके लहजे के सामने दादा साईं हमेशा की तरह हार मान गए। अगर फैसला करके ही आए हैं तो बताएं कहाँ जाना चाहते हैं, उसका मूड खराब होता देखकर दादा साईं मुस्कुरा कर बोले। ज्यादा दूर नहीं, नारान, कागान, सवाद, कश्मीर। उसने कल रात ही हुरिया से उसकी सारी पसंद की जगह पूछी थी और हुरिया ने बरसों से दिल में दबी ख्वाहिश बताते हुए अपनी पसंद की हर जगह उसे बता दी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, आप जितना जल्दी हो सके वापिस आने की कोशिश करेंगे। हम तो हैरान है कि करदम अकेले ये सब कुछ कैसे संभालते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतनी जिम्मेदारियां हैं उन पर, आपके सारे काम वो कर रहे हैं। कल आपको देखकर लगा कि आप समझदार हो गए हैं, लेकिन आज फिर वही बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, अपनी तबीयत में थोड़ा ठहराव लाएं मुकद्दम, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। वापिस आ के समझूंगा ना, शायद वो उनकी बातों से बोर हो रहा था इसीलिए जल्दी से बोला, तो दादा से ही मुस्कुराए। ठीक है, जाएं, उन्होंने मुस्कुराते हुए इजाजत दी तो वो मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। हुरिया, हम लोग सब शादी पर जा रहे हैं, तुम अकेली हो घर पर, शाम का खाना तुमने बनाना है, सब कुछ तैयार कर लेना, रिजवाना खाला ने सख्ती से कहा जब धड़कन उनके करीब आई। लेकिन फूफो साई, ये क्या बात हुई, इनकी शादी को 2-3 दिन नहीं हुए और आप इनको काम पर लगा रही हैं। धड़कन ये इस घर की बहू है और ये सारे काम करना इसकी जिम्मेदारी है, ये पहले भी ये सब कुछ करती थी, कोई नई बात नहीं है, और तुम भी ये उछल कूद छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो, तुम भी इस घर की बहू हो। दादा साईं ने कहा है कि तुम शादी पर जरूर चलोगी, लेकिन इस घर की पोती बनकर नहीं, बल्कि करदम साईं की बीवी बनकर, ये सारा गांव उनकी बहुत इज्जत करता है, इसीलिए आज जब तैयार हो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम हवेली की बेटी नहीं बहू बनकर बाहर निकल रही हो, इस घर में तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। जब से ये लड़की उनकी बेटी की जगह पर आई थी, न जाने क्यों उन्हें ये लड़की भी जहर लगने लगी थी। फूफो साईं के लहजे में कुछ ऐसा था जो धड़कन ने शिद्दत से महसूस किया था, वो पहले की तरह उससे मोहब्बत से बात नहीं करती थी, शायद नए रिश्तों ने पुराने रिश्ते छीन लिए थे। इस वक्त सवाए हुरिया के घर पर और कोई नहीं था, यही वक्त है जब आप उसे सारी सच्चाई बता सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि मुकद्दम शाह ने उससे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की है और वो उससे मोहब्बत नहीं करता। सवेरा सबसे छुप छुपा कर मलिक से बात कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यकीन दिलवा दूंगा, बस तुम एक बार मेरी बेटी मिलवा दो, मलिक तड़प कर बोला था। आपके लिए ही तो किया है ये सब कुछ, हुरिया इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेले हैं, हम सब लोग शादी पे आए हुए हैं, आप जाएं, यही वक्त है, हुरिया से बात कर सकते हैं, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, सवेरा ने फोन रखते हुए कहा। वो खामोशी से घर में था, उसने अपना हुलिया बदल रखा था, कोई भी आसानी से नहीं पहचान सकता था, लेकिन फिर भी उसने सामने के दरवाजे से आने की गलती नहीं की थी कि नौकर उसे देखकर शक न करें। वो आहिस्ता से चलता हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ऊपर की मंजिल पर उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आई। वो जीने उतरता दाएं तरफ आया, जहां किचन में ही उसे अपनी बेटी नजर आई। इससे पहले कि वो अंदर जाता, उसे मेन गेट से मुकद्दम शाह अंदर आता नजर आया, जो सीधा ही किचन में आया था। वो खामोशी से किचन में आया और सब नौकरों को आहिस्ता से बाहर जाने का इशारा किया। वो सब गैर महसूस अंदाज में उसके करीब से निकल कर बाहर चले गए, जबकि वो अपने काम में इस हद तक मसरूफ थी कि मुकद्दम ने जब उसे अपनी बाहों में भरा तो घबरा कर पीछे हटी। जानम, अब ये डर फजूल है, कितनी बार का है, तुम्हें आदत डालो, मुकद्दम उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला। मुकद्दम साईं, हम किचन में हैं। तो चलो बेडरूम में चलकर तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं। मैंने खाना बनाना है। इस शिद्दतों से घबराती उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, जब गर्दन ने खींच कर उसे अपने करीब किया। मैं वो हर वजह मिटा दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। मुझे तुम्हारी मुजाहमत जहर लगती है। वो बिना उसकी मुजाहमतों की परवाह किए उसे अपनी बाहों में उठाए अपने बेडरूम में ले गया, जबकि मलिक जिस तरह से आया था उन्हीं कदमों पर पलट गया। मुकद्दम के जाने के बाद हुरिया जल्दी से किचन में आई, लेकिन सामने देखा तो सब कुछ तकरीबन तैयार था। ये सब कुछ किसने बनाया? उसने करीब खड़ी मुलाजमा से पूछा। ये सब कुछ मैंने बनाया है हुरिया बीबी, आप हमारी इतनी मदद करती हैं तो क्या हम आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सिर्फ रोटियां बनानी रहती थी और कबाब, वो तो आप खुद ही बनाएंगी। मैं बाकी काम करती हूँ और फिकर ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि सब कुछ उसी तरह से बनाऊं जिस तरह से नाजिया बीबी बनाती हैं। अब बिल्कुल उनके जैसा तो नहीं बना होगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बना। उसने जैसे हुरिया की सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ये सब कुछ नहीं करती तो मैं फंस गई थी। हुरिया ने शुक्र की सांस ली। हेलो, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मुझे फोन नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको फोन करूंगी। मलिक का फोन आता देखकर सवेरा परेशानी से लोगों में से उठकर बाहर आई थी। तुमने मुझसे कहा था कि घर में हुरिया के अलावा और कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो मुकद्दम शाबी है। मैं अपनी बेटी से मिल ही नहीं पाया, मलिक ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मुकद्दम साई तो डेरे पर हैं, वो हवेली में कैसे आए? सवेरा ने परेशानी से कहा। देखो लड़की, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो ठीक से करो, ये तो तुम मुझे फंसवा रही हो। अगर आज मैं वक्त पर वहां से नहीं निकलता या किसी नौकर की नजर में आ जाता तो जानती भी हो हवेली वाले मेरा क्या हाल करते। मलिक ने कहा तो सवेरा को उसकी बातों से मजीद गुस्सा आने लगा। पहले ही मुकद्दम शाह का सबसे छुप कर हवेली में हुरिया से मिलने जाना ही उसे गुस्सा दिला गया था, और अब यह मलिक अपनी बेटी से न मिल पाने का अफसोस कर रहा था। फोन बंद होने के बाद भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। बस बहुत हो गया हुरिया, बहुत चीली तुमने अपनी जिंदगी। इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मुकद्दम शाह खुद तुम्हें छोड़ देगा। शाम में खाना तकरीबन सभी लोगों को पसंद आया था, जिसकी वजह से हुरिया पुरसकून हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जमीनों के मसाइल फिर से खड़े हो चुके थे। ऐसे में मुकद्दम का कहीं जाना मुश्किल हो गया था, लेकिन करदम ने दादा साहब को समझाया कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेंगे। दादा साई उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन करदम ने जब मुकद्दम को मायूस देखा तो आखिर उसने दादा साई को मना ही लिया। मुकद्दम ने भी उससे यही कहा था कि वो इसे इतने बड़े मस्ते में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, जिस पर करदम ने उससे भी यकीन दिलाया था कि वो ये सब कुछ संभाल सकता है, उसने पहले भी किया हुआ है। वो नहीं चाहता था कि मुकद्दम उसकी वजह से अपनी जिंदगी के हसीन तरीन दिन बर्बाद करते, इसीलिए दादा साई को भी उसने खुद मुतमईन किया था, तब जाके वो उसे कहीं भेजने के लिए तैयार हुए। आज उनकी शादी को 7 दिन गुजर चुके थे, हर तरफ दावतों का सिलसिला जारी था। मुकद्दम की संगत में उसके दिन रात हसीन गुजर रहे थे। वो जो चाहता था उसे हासिल करता था, ना हुरिया की मुजामते काम आती थी और ना ही मिन्नतें। वो अपने जज्बात का इजहार करने के मामले में बेबाक था। कमरे में आकर जब मुकद्दम ने उसे ये सरप्राइज दिया कि वो कुछ ही दिन में सवाद के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो तो बचपन से ही सवाद, नारान और कागान जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि हवेली से लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, और इतनी दूर तो नामुमकिनात में से था। लेकिन शादी के बाद उसकी ये ख्वाहिशें इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगी उसे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए खुशी भी दुगनी हो रही थी। इस वक्त वो बड़े मजे से अपने और मुकद्दम के बैग पैक कर रही थी, जब मुकद्दम कमरे में दाखिल हुआ उससे इस कदर मसरूफ देकर उसके करीब बैठ गया। मेरे दिल का करार, ये सारे कपड़े तो गर्मियों के रखे हैं, वो उसे देख कर बोला। हाँ मुकद्दम साई, मौसम बदल चुका है ना, तो वहां पर गर्मी हो रही होगी, हुरिया ने वजह बताई। जी नहीं, वहाँ इतनी गर्मी नहीं हुई कि हम ये वाले कपड़े पहने। वैसे भी आपको पैकिंग करने की जरूरत क्या है, आपको वहाँ मेरी पसंद के कपड़े पहनने हैं। मुझे भी तो देखना है कि मेरी बीवी पे कौन कौन सी चीज सूट करती है। मुकद्दम साई, मैं पहले बता रही हूँ, मैं वो बेहुदा लिबास नहीं पहनने वाली। कल रात ही एक फिल्म के दौरान मुकद्दम ने कहा कि हुरिया ऐसे कपड़े पहने जिस पर हीरोइन को देख कर हुरिया की आंखें खुल गई। वैसे ही कपड़े पहनोगी, डोंट वरी, मैं तुम्हें इन कपड़ों में कहीं बाहर नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ बेडरूम में मेरे सामने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके सामने भी नहीं, किसी के सामने कहीं मुझे शर्म आएगी ना, वो बेबसी से बोली जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मेरे दिल का करार, तुम्हें वो लिबास पहनाकर शर्माते ही तो देखना चाहता हूँ मैं। कसम से जब शर्मा शर्मा के मेरी पनाहों में समाती हो ना, दिल के सारे तार हिल के रह जाते हैं। वो उसके करीब आकर खुमार आलूद लहजे में बोला, मुकद्दम साईं पैकिंग। उसके लहजे से ही वो उसके इरादों का पता लगा चुकी थी। बाद में कर लेना, कौन सा हम अभी जा रहे हैं। उसके हाथों से कपड़े लेकर दूर उछालता उसे अपने करीब करने लगा। मुकद्दम लाला, आपको नाना सही बुला रहे हैं, तायशा ने खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। तो फिर ये फौरन उससे दूर हटी, जबकि उन्हें इस हद तक नजदीक देखकर तायशा फौरन पलट गई। वहां जाकर एक और फायदा होगा, कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। वो मुंह बनाकर कहता दादा साई से मिलने चला गया। मुकद्दम शाह की बनी हुई शक्ल पर हुरिया की मुस्कान बड़ी मुश्किल से रुकी थी। आजकल काम की नौयत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि करदम को धड़कन को देखने तक का वक्त नहीं मिलता, और धड़कन भी अपनी पुरानी रूटीन पर आ चुकी थी। वो अक्सर लूडो लिए दादा साईं के कमरे में मिलती, लेकिन दादा साईं के सामने वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर सकता था। पर दादा साईं उसकी नजरों में धड़कन के लिए पसंदीदगी देख चुके थे। मुश्किल से ही सही, लेकिन 7 दिन गुजर चुके थे, लेकिन धड़कन को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे अपने आने वाली जिंदगी का इंतजार ही नहीं, उसका बचपना एक बार फिर से सर उठाकर सामने आ चुका था। पहले करदम को लेकर उसके दिल में जो डर था तकरीबन खत्म हो चुका था। करदम और धड़कन का आमना सामना भी बहुत कम होता। 3 दिन पहले डिनर टेबल के बाद आज वो दादा साईं के साथ लूडो खेलती नजर आई। देखो धड़कन, हमने अभी तुम्हारी गोट मारी है। दादा साईं, मैंने तो कोई बकरी रखी ही नहीं, आपने कैसे मेरी बकरी मार दी। अपनी बेईमानी पकड़े जाने पर फौरन ही उन्हें बातों में लगाने की कोशिश करने लगी। देखो धड़कन, हम बकरी की नहीं अपने खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसे तुमने अभी बड़ी सफाई से हमारी आंखों के सामने उठाने की कोशिश की है। हमें पहले भी तुम पर शक था, तुमने दोबारा हमारी गोटी को घर पहुंचने से पहले उठा दिया है, और अब तुमने हमारे सामने किया है। पहले हम गलत फहमी समझ कर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस बार तुमने हमारी आंखों के सामने किया है। तुम बेईमानी कर रही हो और हम बेईमानी नहीं करने देंगे तुम्हें। वाह वाह, हार रहे हैं तो इस तरह से इल्जाम लगाएंगे मुझ पर, वो जल्दी जल्दी बोल रही थी जब करदम को आता देखकर खामोश हो गई। बहुत बड़ी बेईमान हो तुम धड़कन, हम तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहे बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं, तुमने बेईमानी की है। अब शराफत से गोट वापिस रख दो हमारी। दादा साईं को उसके साथ बच्चा बने देखकर करदम मुस्कुराता उनके करीब बैठ गया, जबकि दिलचस्प नजरों से सामने बैठी धड़कन को देख रहा था, जो उसे खुद को देखता पाकर कंफ्यूज हो गई और फौरन ही गोट रख दी। मैंने बेईमानी नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो ले रख लें। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती गोट उनके हवाले करने लगी। उसकी मासूम बनी हुई शक्ल देखकर दादा साईं को उस पर तरस आ गया। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, दादा साईं ने तरस खाते हुए कहा, जबकि उन दोनों से छुप कर धड़कन ने अपनी हंसी छुपाई, लेकिन छुपाने के बावजूद भी करदम से वो छुप नहीं सकी। बहुत बड़ी पटाखा है ये लड़की, मैं बेकार में इसे छोटा पटाखा समझ रहा था। करदम पर एक और राज फाश हुआ। धड़कन, एक कप चाय बना लाओ, दादा साईं मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो दादा साईं से कुछ चौधरी के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए उसे बाहर भेजने लगा। चाय तो मैं बना ली हूँ, तायशा ने दादा साईं के कमरे में कदम रखते हुए कहा। मुझे पता है आपको हवेली वापस आते ही चाय की तलब होती है, तायशा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उसके सामने रखा, जबकि जितलाती नजरों से धड़कन को देखा। मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता करदम साईं, तायशा के लहजे में गरूर था, जबकि तायशा को चाय सर्व करते देखकर धड़कन को बिल्कुल अच्छा ना लगा। तुमने ठीक कहा था तायशा, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी बीवी के हाथ की चाय पीने की तलब है, जाओ धड़कन। उसने तायशा के कप को इग्नोर करते हुए धड़कन को मुखातिब किया, जो कि कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगी। मुझे चाय बनानी नहीं आती करदम साईं, वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से बोली, लेकिन करदम को उस चेहरे पर बिल्कुल तरस नहीं आया था। कोई बात नहीं, 2-3 बार बनाओगी तो आ जाएगी, जाओ मुलाजमा होंगी वो तुम्हें बताएंगी, उनसे सीख कर बनाओ, और आज से रोज शाम मेरे लिए चाय तुम बनाओगी। वो उसे रायत देने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था, जबकि वो मरे कदमों से उठी और किचन की तरफ जाने लगी, जबकि तायशा अपने जले हुए जज्बात देकर वहां से बाहर आ गई। मुलाजमा से पूछकर बना लो, मतलब क्या सोचेगी मुलाजमा कि इस घर की बड़ी बहू को चाय तक बनाना नहीं आती, इंटरनेट से देखकर बनाऊंगी। फोन पे यूट्यूब खोलते हुए किचन की तरफ जाने लगी। तायशा गुस्से से अपने कमरे में आ गई। उसका दिल चाहा कि धड़कन का मुंह तोड़ दे। किस तरह से करदम ने आज पहली बार उसके हाथ की चाय पीने से इनकार कर दिया। वो कैसे उसके दिल के साथ यूं खेल सकता है। वो जानता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है और उसके दिल को इतनी आसानी से तोड़ दिया। कितनी मोहब्बत से वो उसके लिए चाय बना कर लाई थी। ये आपने ठीक नहीं किया करदम साईं। मैं आपको इस तरह से अपनी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं करने दूंगी। मैं कभी अपनी जगह धड़कन को नहीं लेने दूंगी। आप पर पहला हक मेरा है, वो मेरा ही रहेगा। धड़कन चाहे कुछ भी कर ले, कभी मेरी जगह नहीं ले पाएगी और ना ही उसे मैं अपनी जगह लेने दूंगी। जो भी हुआ है उस पर तुम पछताओगी। तुम्हें लगता है ना तुम मुझसे मेरे करदम शाह को छीन लोगी, तो मैं तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी। करदम शाह दादा साईं के करीब से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा फ्रेश होने का था। धड़कन की मासूम शरारत याद करते हुए दादा साईं एक बार फिर से मुस्कुरा उठे। धड़कन बिल्कुल आना शाह जैसी थी, उसी की तरह मासूम, उसी की तरह शरारती। कितनी प्यारी थी उनकी बेटी आहाना, सबसे अजीज लेकिन इतनी ही मुश्किल तरीन जिंदगी। कितनी मोहब्बत, लाड और प्यार से, कितने नाजों से अपनी बेटी पाली थी। इतनी मोहब्बत तो उन्होंने कभी रिजवाना से भी ना की थी जितनी आहाना से करते थे। उसे देखते ही उनके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। देखने में हुरिया भी बिल्कुल आहाना जैसी ही दिखती थी, बिल्कुल आहाना जैसी आंखें जिन्हें देखने से वो अक्सर गुरेज करते। कद बिल्कुल आहाना जितना था। वो उनकी सबसे लाडली बेटी की बेटी थी, लेकिन सिर्फ आहाना की नहीं, वो तो एहसन मलिक की बेटी थी जिससे वो नफरत करते थे। और उस आदमी से नफरत की इंतहा ये थी कि वो अपनी बेटी की बेटी तक को ना देखते। वो खामोशी से अपनी कुर्सी से उठे और आहाना के कमरे की तरफ चले आए। उस कमरे में सवाए दादा साईं के और कोई नहीं आता था। वो जब भी उदास होते या आहाना की याद हद से ज्यादा आती तो वो इस कमरे में चले जाते जहाँ आहाना ने अपना खूबसूरत बचपन गुजारा था। धड़कन ने यूट्यूब से चाय बनाना सीखी, लेकिन मुलाजमाइयों से अजीब नजरों से देख रही थी। चाय के लिए वो कभी एक चीज मांगती तो कभी दूसरी चीज। छोटी बीबी जी, चाय में इतनी चीजें नहीं डाली जाती, मुलाजमा ने समझाते हुए कहा। ओहो, आप मुझे कंफ्यूज ना करें, यूट्यूब वाले मास्टर हैं, उन्हें सब पता होता है। जैसे आप बनाते हैं वैसे चाय नहीं बनती, मुझसे सीखिए कि किस तरह से चाय बनाई जाती है, धड़कन ने किसी माहिर शेफ की तरह कहा और चाय बनाने में झट गई। मुलाजमा भी उसकी डांट से डरते हुए जो कुछ वो मांग रही थी देती जा रही थी। और फिर चाय नामी एक शाहकार तैयार हो गया जिसे अब करदम साईं ने पीना था। मुबारक हो करदम साईं, आपकी बीवी ने पहली बार चाय बनाई है, वो खुद को शाबाशी देती हुई करदम को भी मुबारक भी दे रही थी और चाय लेकर उसके कमरे में जाने लगी। दादा साईं कितनी ही देर आहाना के कमरे में रहे, उन्हें याद था ये कमरा आहाना और वो दोनों सजाते थे। वो अपने हर काम में सिर्फ अपने बाप को शामिल करती थी। शाह साईं जो दुनिया के लिए सख्त गिर इंसान थे, अपनी बेटी के लिए दुनिया के बेहतरीन बाप थे। आहाना के लिए उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नजर नहीं आया, वो उस पर कभी गुस्सा कर ही नहीं पाते थे, बिल्कुल धड़कन की तरह। धड़कन के हर स्टाइल में उन्हें कहीं ना कहीं आहाना नजर आती थी। शायद हुरिया के भी अंदाज में आहाना होती होगी, लेकिन हुरिया पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो उनके दुश्मन की जो बेटी थी। तस्वीर वाला एल्बम कहाँ गया, यहीं तो रखा था। वो अलमारी में तस्वीरों वाला एल्बम ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ना मिला। फिर अचानक याद आया, वो तो कुछ दिन पहले वो अपने कमरे में ले गए थे। फिर कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनका इरादा अपने कमरे से एल्बम निकालने का था। वो चाय लेकर आई, करदम नहा रहा था। करदम साईं, आपकी चाय, धड़कन ने टेबल पर रखते हुए कहा। वहीं मेज पर रख दो धड़कन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो अंदर से बोला। ठीक है, आप चाय पी लीजिएगा, मैंने बनाई है यूट्यूब से देखकर, धड़कन ने बताना जरूरी समझा, जिस पर अंदर करदम बेसाख्ता मुस्कुराया। अच्छा, तुमने यूट्यूब से देखकर चाय बनाई है, गोया बात खींचने को उसके साथ बातें करना चाहता था। जी हाँ, अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, धड़कन ने वापसी की राह लेते हुए कहा। धड़कन थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करदम का दिल उसे बहुत सारी बातें करने को था, लेकिन धड़कन थी जो यहाँ से भागना चाहती थी। नहीं, मुझे हुरिया दीदा के कमरे में जाना है, मुझे उनसे कुछ काम है, आप बाद में बात बता दीजिएगा। न जाने क्या क्या काम है, वो उसके जज्बात और ख्वाहिशात से अनजान बोली और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या क्या काम है, फिर देखूंगा कैसे करती हो ये भाग दौड़। आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। हुरिया ने धड़कन से कहा था कि वो चाय बनाकर उसके कमरे में आ जाए, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो ना आई तो फिर हुरिया उसके पीछे चली गई। हो सकता है उससे चाय ना बनी हो, लेकिन रास्ते में ही नजर अचानक अहाना के कमरे पर पड़ी। उसे याद था बचपन में जब वो एक बार कमरे में गई थी तो नाना साई ने उसे बहुत सख्त डांटा था और उसके बाद वो उस कमरे में नहीं गई, लेकिन ये उसकी माँ का कमरा था, वो खुद को रोक भी नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी वो कमरे के अंदर चली गई। उस कमरे की हर चीज उसकी माँ की थी, जिसमें उसकी माँ की यादें थी। उस घर में कभी भी उसे अहाना की बेटी के रूप में कबूल नहीं किया गया, सब लोग उसे ऐसन मलिक की बेटी कहते थे। वो तो कभी भी अहाना की बेटी ना बन पाई, लेकिन उन सब के कहने से क्या वो अहाना की बेटी नहीं रहेगी? वो उसकी बेटी थी, कोई माने या ना माने। उसके सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसमें नाना साई ने उसकी माँ को अपने सीने से लगाया हुआ था। कितना प्यार करते थे वो उसकी माँ से, और उससे इतनी ही नफरत, जैसे उसकी माँ का कत्ल उसके बाप ने नहीं बल्कि उसने किया हो। वो हर चीज को छूती अपनी माँ का लम्स महसूस कर रही थी। उसकी आंखें कब भीगने लगी उसे महसूस ना हुआ। करदम शाह नहा कर निकला तो नजर सामने मेज पर उल्टे पड़े कप पर पड़ी। वो परेशानी से आगे बढ़ा और कप को एक तरफ करता जरूरी कागजात देखने लगा जिनका बेड़ा गरक हो चुका था। या खुदाया, ये क्या हो गया? कागजात को देखते हुए वो बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि ये बहुत जरूरी कागजात थे। ये उस लड़की ने क्या कर दिया? करदम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ये इंतहाई जरूरी कागजात थे तो इसलिए भागी बेवकूफ लड़की, गलती कबूल की जाती है, इस तरह से भागा नहीं जाता। शायद करदम को इतना गुस्सा ना आता अगर धड़कन उसे बिना बताए यहाँ से चली ना जाती। अगर चाय पेपर्स पर गिर गई थी तो उसे बता देना चाहिए था ना, ना कि इस तरह से झूठ बोलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो पेपर्स उठाकर नीचे आया, क्योंकि माना चाहे गलती से गिरी होगी, लेकिन उसे छुपाकर धड़कन ने गलती की थी जो करदम को हर गिज पसंद नहीं आई। वो कभी नहीं चाहता था कि वो तायशा की तरह हर बात में उससे झूठ बोले। वो अपना और धड़कन का रिश्ता सच्चाई से मजबूत करना चाहता था। अब इन पेपर्स की वजह से जो नुकसान होना था सो हुआ, लेकिन करदम का इरादा धड़कन को ये बताने का जरूर था कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि छुपानी। शाह साई कमरे की तरफ वापिस जा रहे थे, तस्वीरों वाला एल्बम मिल चुका था, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही जब उन्होंने हुरिया को आंसू बहाते देखा तो गुस्से से उनके माथे की रगे बाहर आने लगी। ये वक्त वो अपनी बेटी के साथ तनहा गुजारना चाहते थे। ये वो वक्त था जब वो हुरिया की शक्ल हरगिज नहीं देखना चाहते थे। इस वक्त गुस्से के बायस उनका पूरा बदन कांप रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़े। ये तुमने क्या किया बेवकूफ लड़की? करदम ने पेपर्स उसके सामने टेबल पर फेंके थे। ये क्या है करदम साई, और मैंने क्या किया है? धड़कन ने अनजान नजरों से पेपर्स को देखते हुए पूछा जो अब जमीन पर पड़े थे। ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या किया है? देखो धड़कन, अगर गलती हो जाए तो मुझे बता दो, कम अज कम इस तरह से वहां से भागने का क्या मतलब था? तुम मुझे बता सकती थी ना, गलती से गिर गई चाहे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताए बगैर तुम्हारा यहाँ आना गलती है, इस तरह से झूठ बोलना गलत है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला करदम साई, इस तरह सबके सामने अपनी इंसल्ट होते देखकर वो चुप नहीं रही। सच छुपाना झूठ ही होता है धड़कन, तुमसे गलती हुई है, इसे एक्सेप्ट करो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई करदम साई, मैंने चाय आपके बेड की साइड वाली टेबल पर रखी थी, वहां कोई पेपर्स नहीं थे। मैं कोई बेवकूफ या छोटी बच्ची नहीं हूँ कि ऐसी चीजों की समझ ना हो। धड़कन, अगर गलती हो जाए तो इसे कबूल करना चाहिए। कौन सा करदम साई तुम्हें कुछ कहेंगे जो तुम इस तरह से झूठ बोल रही हो? तायशा ने आगे बढ़ते हुए कहा। तायशा दीदा, आप खामोश रहें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तायशा की मुखालफत ने धड़कन को मजीद गुस्सा दिलाया था। जिस दिन से तायशा ने उसके हाथ जलाए थे उसे लग रहा था कि तायशा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसकी नफरत ज्यादा निगाहों को भी वो खुद पर नोट कर चुकी थी और अब इस सब की वजह भी समझने लगी थी। वो अपनी खुद तक महदूद रहने वाली नेचर की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज तायशा का उसके और करदम के बीच में बोलना उसे जहर लगा था। अगर मैं गलती करूंगी तो उसे एक्सेप्ट करूंगी, इतना हौसला है मुझ में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चाय बेड की साइड टेबल पर रखी और वहां कोई पेपर्स नहीं थे। न जाने क्यों अपनी सच्चाई का यकीन दिलाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा तो कहते थे कि करदम उसका साहिबान है, जिंदगी के हर मामले में उसका साथ देगा, यहाँ वे खुद खड़ा उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। उसके आंसू देकर करदम का गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। इससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, बाबा साईं की बुलंद आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। मैं पूछना हूँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस कमरे में कदम रखने की? वो गुस्से से धाड़े। नाना साईं, वो मैं दरअसल, हुरिया ने कुछ कहना चाहा जब शाह साईं ने तस्वीर हाथ से खींच निकाली। दफा हो जाए यहाँ से और आज के बाद इस कमरे में कदम रखने की जरूरत कभी मत करना। ये मेरी बेटी का कमरा है जिसका कत्ल तुम्हारे बाप ने किया है। वो गुस्से से अपने आपे से बाहर हो चुके थे। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है नाना साईं, वो आंसू भरे चेहरे से बोली। शायद उन्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि उनकी बेटी का उसके साथ भी एक मजबूत रिश्ता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, घर के सारे ही लोग इस कमरे में पहुंच चुके थे। बकवास बंद करो, कुछ नहीं लगती हमारी बेटी तुम्हारी। तुम्हारा बाप हमारे खानदान का कातिल है। तुम्हारे बाप ने मेरे जवान बेटों को मार डाला, एक बेटी को बेवा कर लिया और दूसरी बेटी की जान ले ली। दादा साईं, करदम ने आगे बढ़ते हुए उनके कंधे थामे, नहीं हो तुम हमारे खानदान का खून, दुश्मन की बेटी हो। वो धाड़ते हुए बोले, ये जाने बगैर कि उनके अल्फाज सामने वाले पर क्या असर कर रहे हैं। छोड़े बाबा साईं, आप किसके सामने ये सारी बातें कर रहे हैं? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अपनी मनहूसियत हमारे घर ले आई। खटिया बाप खटिया बेटी, रिजवाना ने जहर उगलते हुए बोला। बस फूफो साईं, कदम धीमी आवाज में बोला। अदब और लिहाज से कुछ भी सख्त न बोलने पर मजबूर कर गया था और अब उसकी मनहूसियत मेरे बेटे की जिंदगी खराब करेगी। न जाने कौन सी अदाएं दिखा दिखा कर उसने मेरे बेटे को फंसाया है। आज पहली बार इस घर में नाजिया के मुंह से अपने लिए उसने कुछ सुना था। उसका दिल चाहा कि वो डूब मरे या जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे यकीन था कि नाजिया मामी साईं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इतनी शदीद नफरत हुरिया से मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो भागते हुए उस कमरे से निकलती चली गई। कितनी आसानी से ये सब लोग उसे कातिल की बेटी कह रहे थे। कोई नहीं कह रहा था जिसका कत्ल हुआ है वो उसकी माँ है। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। जब अगले ही लम्हे उस कमरे में धड़कन दाखिल हुई और उसे अपने सीने से लगाया और उसे संभालने लगी। शाम तक घर का माहौल बेहतर हो चुका था। दादा साईं का गुस्सा उतर चुका था। उस वक्त उन्हें अपने लफ्जों का एहसास भी था। वो गुस्से में हुरिया के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर चुके थे। वो उस मासूम को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो कभी ये बात भी नहीं भुला सकते थे कि वो मलिक की बेटी है। थड़कन ने हुरिया को चुप करवाया जबकि उसकी उदासी अभी भी बहुत कुछ बयान कर रही थी। मुकद्दम शाह दूसरे गांव गया हुआ था। उसे तो खबर ही ना थी कि आज उसके घर में क्या हुआ है। हुरिया अभी तक कमरे से नहीं निकली। आज उसे अपने ही वजूद से नफरत हो गई। वो अपने अंदर ऐसी घुटन महसूस कर रही थी कि मौत की ख्वाहिश भी शिद्दत से कर बैठी।